नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो मौसम और भू राजनीतिक चुनौतियां आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच गोल में पहले टेस्ट मैच में आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। भारत जीत से 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।